ध्यान लगा रहा है, ध्यान लगाकर सुन रहा है, ध्यान में सुन रहा है। तो दूसरे दिन नियम बनाया गया कि जो ध्यान लगाकर कथा सुनेंगे उन पर 500 रुपये फाइन लगेगा, और जो सोकर कथा सुनेंगे उन पर 1 रुपया, 1 रुपया फाइन लगेगा। तो दूसरे दिन पूछा गया, दूसरे दिन वो सोने वालों से, आप सो रहे थे? तो कहते हाँ सो रहा है, अब कोई ध्यान नहीं कर रहा है। क्योंकि उसे 4 रुपया ज्यादा देने वाला, इसलिए अब समाधि नहीं लग रही थी, 4 रुपया में ही समाधि खत्म कर दिया। तो कहे हाँ सो रहे, हाँ झपकी आ गई। सावधान रहना चाहिए, मैं जानता हूं कि एक बार नींद खुलेगी तो कहेंगे नहीं सो रहा, क्योंकि हमारे पास कोई एक्सरे की मशीन नहीं है आपके हृदय को पढ़ने की कि आप सो रहे हैं कि समाधि में। तो सावधानी से सुनना चाहिए, इस देहात मति को निकाल देना है, क्योंकि हम लोग देह नहीं है और हम तो देह छोड़कर चले जाएंगे। मति अगर रहेगी तो दूसरे देह को मैं मान लू, तत्काल मैं मानेंगे दूसरे देह, यही चलता रहेगा अपने स्वरूप को भूल करके। कितना प्रभावशाली थे जड़ भरत जी, जिनके संग से राजा रहुगण तत्काल छोड़ दिए देहात्म मत। तो राजा परीक्षित पूछते हैं कि जो है वह यह बहुविधा महाभागवत तो या अभिहित परोक्षण वचसा, हे महाभागवत श्री सुखदेव गोस्वामी, आप बहुविद हैं, आप बहुत जानते हैं, आप परम विद्वान हैं, आपने परोक्ष वचन से जो जीव लोक के इस संसार मार्ग का वर्णन किया, भवतवी का वर्णन किया, यह आर्ज मनीषा से कल्पित विषय है। आर्ज का अर्थ है जो बहुत पढ़े लिखे हैं, श्रेष्ठ हैं, उनकी श्रेष्ठ बुद्धि से यह कल्पित विषय है। कल्पित का अर्थ रचित, बैठाया गया। न अंजसा अव्युत्पन्न मति समधि गम, लेकिन जो अव्युत्पन्न मति है, जिसकी बुद्धि तेज नहीं है, वह इस विषय को ठीक से समझ नहीं पाएगा, जो समझना बड़ा कठिन। इसलिए अथवा इसलिए पश्चिम एतद, उसी विषय को जिसको आपने कहा जब भरत जी के मुख से, उसी दुर्वगमन जो समझने में कठिन है, तो समवेतानुकल्पे न निर्दिश्यता, उसको समवेत अनुकल्प से हमको बताइए। समवेत का अर्थ है कि पूरा पूरा अनुकल्प से, क्रम से उसे बताइए। जैसे मान लीजिए आपने कहा कि उस बड़ी समुदाय के साथ श्रृंगार लग जाते, सियार लग जाते हैं, तो हमें कृपा करके बताइए कि सियार स्थान में कौन है, उसको बताते जाइए। सियार कौन है, या भेड़िया कौन है, अजगर कौन है, या चक्रवात कौन है, जो जैसा उसको वहां बैठाते ही हमको समझाइए। ये हमारे समझ में बात आ नहीं रही, तो आप निर्देश कीजिए, निर्दिश्यता हमको, नितरम दृश्यता हमको पूरी पूरी तरह से समझाइए, सामोपान रूप से, जिसे मैं समझ सकूं। क्योंकि यह जो विषय है आर्ज कल्पित विषय, आर्जानाम विवेकिना मनीषया एवं दस्यु स्थानीय इंद्रियाणाम गुमाई स्थानीय अपत्यादि नाम, एवं कल्पित विषय। दस्यु कौन है, गुमायु कौन है, गुमायु मतलब सियार, इसियार कौन है, और घुड़ार हम लोग भेड़िया को कहते हैं, ये कौन है, कैसे है, सब समझाई, हमारे समझ में नहीं आ रही। तब सिद्ध गोस्वामी अब भवतवी की साफ व्याख्या कर रहे हैं। प्रथम श्लोक की व्याख्या इतने में है, जो प्रथम श्लोक इसमें दिया गया है बहुत विस्तार से। स ह उवाच, भगवान वेदव्यास कहते सहवाच वह बोले कौन जो राजा परीक्षित द्वारा पूछे गए वे बोले, मतलब पूछने पर सुखदेव गोस्वामी ने कहा, इसका यह अर्थ है। हमेशा श्री सुख उवाच होता है और यहां स होवाच है, का अर्थ है स्पष्ट। वह स्पष्ट बोले, देखिए यहां पर शायद यह श्री सुख उवाच नहीं, लेकिन सुखदेव गोस्वामी के लिए है। वे बोले, कौन बोले, जो जिज्ञासित हुए थे, पूछे गए थे, वे बोले और स्पष्ट बोले। ऐसा देहात्म मानिना सत्वाद गुण विशेष विकल्पित कुशला कुशल समवहार विनिर्मित विविध देहावलिधि वियोग संयोगाद अनादि संसार अनुभवस्य द्वार भूतेन षडिन्द्रिय वर्गेण तस्मिन् दुर्गाभवत् अशुगने अध्वनि आपतिता ईश्वरस्य भगवतो विष्णुर्वशवर्तिन्या माया जीव लोको एवं यथा बलिक्षार्थोऽर्थ परः स्वदेह निष्पादित कर्मानुभव शमशानवत् अशीतमायां संसार टव्यां गतो नद्याति विफल बहु प्रतिजोगे तत्तापो प्रशमने हरिगुरु चरणारविन्द मधुकरान पदवीं अवरुन्धे यस्याम् हवायते षडिन्द्रिय नामान कर्मणा दर्शयति। यह है संस्कृत गद्य। जो लोग कुछ संस्कृत पढ़ लेंगे उनको ये हिंदी जैसा समझ में आएगा, ये अपनी भाषा संस्कृत। यह ऐसा अध्यात्म मानना सार्थ यहां से चालू करें। अन्वय के अनुसार ऐसे दुरत के ध्वन अध्वन अजया निवेशित इस श्लोक की व्याख्या हो रही है, प्रथम श्लोक की, फिर हमें अध्याय प्रथम श्लोक की। न एष अयम जीवलोक, यह जो जीवलोक है, जीवों का समुदाय है इस प्राकृतिक जगत में, तो अयम शब्द है प्रसिद्धि के लिए। सभी जानते हैं कि इस लोक में बहुत जीव है, यह जो जीव है विशेष करके मनुष्य ईश्वर से भगवतो विष्णु वर्तनीय माया, भगवान विष्णु के वश में रहने वाली माया के द्वारा इस भावा कवि में प्रवेश कराया गया है। प्रवेश कराया गया है इसका अर्थ ही नहीं समझना कि पहले नहीं था, अनादि सत्य प्रयुक्त है, अनादि काल से माया पद संपूर्ण जगत के जितने जीव हैं सभी भगवान की माया के वश में। कौन भगवान? एक प्रश्न, विष्णु भगवान। विष्णु का अर्थ होता है जो सब जगह प्रविष्ट है, सबको उत्पन्न करते हैं और पोषते हैं। भगवत विष्णु ईश्वर से माया और वश वर्तनीय माया, संपूर्ण जीव समुदाय माया के वश में है और माया किसके वश में है? विष्णु वश वर्तनीय, विष्णु वशवर्तिनी भगवान के वश में रहने वाली है। भगवान गीता में कहते हैं, उस श्लोक में कहते क्या, महावीर ये प्रपद्य के माया में कम तरह के दैवी है सर, गुरुमयी कम माया दुरत है, मेरी माया सुदुरत मेरी माया। सभी लोग अज्ञानी बने हुए हैं, सभी संसार को भोग रहे हैं, संसार को सत्य मान एक व्यक्ति की माया, उसी ने इस जगत को उत्पन्न भी किया है, सबको खाने पीने की वस्तु दे रहा है, देह भी दिया है और इस तरह अज्ञान भी बने। बुद्ध सभी जीव माया के पास और माया भगवान, इतना सुंदर शब्द है विष्णु बस वर्तनीय माया, विष्णु के वश में रहने वाली माया के द्वारा देहात्म मान है। तो माया का प्रभाव है कि सभी जीव देह को ही आत्मा मान रहे हैं, संपूर्ण विश्व में चाहे ब्रह्मलोक हो चाहे नरक हो, सब जगह प्रत्येक जीव अपने को देह मान रहा है, यह भगवान की माया का प्रभाव है। तो देहात्म मानी नाम देहे एवं आत्मा इति मन्यमाना नाम
जो देह ही आत्मा है ऐसा मानते हैं, पुरुष सत्वादि गुण विशेष विकल्पित कुशला कुशल समाहार विनिर्मित विविध देहावादी जी है। सत्वादि गुणों के द्वारा कल्पितानि विभक्ता सात्विक राजस तामस भेद भिन्नाने जाने कुशलाने शिक्षा बनाने सात्विकानी अकुशलाने दुख साधनानी राजसानी कुशलानी प्रमादा लक्ष्य साधनानी रजस तमोदानी कर्माणी कह विनिर्मित आपादिता जो तुम इस देहावन भी देव प्रिय मनुष्य आदि देहावन भगवान की माया से जीवों में देहात्म बुद्धि होती है और देहात्म बुद्धि होने पर प्रकृति के तीन गुणों के अनुसार उसके कर्म होते हैं। सत्वादि गुण विशेष विकल्प जो जिस गुण में रहता है, सत्गुण में रहता है या रजोगुण में रहता है तमोगुण में रहता है, उसके अनुसार वो कर्म करता है। तीनों गुण साथ रहते हैं लेकिन जो गुण प्रधान रहता है तो कहा जाता है कि आप व्यक्ति उसी गुण का, जैसे रजोगुण तमोगुण सत्गुण साथ रहते हैं लेकिन जिसमें सत्गुण की अधिकता होगी तो कहा जाएगा तो सत्गुणी की लेकिन रहेंगे तीनों दो दबे रहते। भगवान ने किताब बहुत अच्छी तरह से वर्णन किया है कि जब सत्गुण बढ़ता है तो क्या होता है, तमोगुण बढ़ता है तो क्या होता है, रजोगुण बढ़ता है तो क्या होता है। तो तीन गुणों के अनुसार कर्म करता रहता है और उन कर्म कैसे कैसे कर्म करता है गुणों के अनुसार विकल्पित मतलब भेद होता है। कुशला में कुशल अकुशल यहां शब्द आया, कुशल कर्म करता है, कुशल सत्गुण में जब रहता है तो कुशल कर्म करता है। कुशल कर्म का अर्थ है सुखदायक कर्म, जिन कर्मों का फल उसे स्वर्ग मिलता है या इससे जीवन में भी वह अच्छे कुल में जन्म लेता है, धनी परिवार में जन्म लेता है, सुखी रहता है, सुख साधता है। हम लोग इस संसार में कुछ भी वस्तु कुछ भी सुख या दुख चाह करके नहीं पा सकते, इच्छा से नहीं मिलता, वो हमारे कर्मों का हिसाब है, हमारे पीछे उसके अनुसार मिलता है, उसे नहीं मिलेगा, दुख भी नहीं मिलेगा चाहने। अगर कोई चाहे कि हमको दुख मिले तो पत्नी दुख नहीं दिखा रहेगा, कर्म भी नहीं मिलेगा और सुख भी नहीं मिलेगा। यदि आपकी इच्छा हो जाए आज कि मैं जेल में जाना चाहता हूं, आप जाइए जेल के फाटक पर और कहिए पुलिस से उसको ले लो अंदर में रहना चाहता हूं, वो नहीं देते क्योंकि आप कर्म में कोई केस मुकदमा नहीं, वो नहीं देंगे, भगा देंगे, कहीं पागल हो गया है जहां तो ज्यादा कहना ही नहीं, बहुत दिन सुख से रहा आप उस पर दो चार फेंक मारो और हमको जेल भुगतान, वो नहीं मारे, मार छू नहीं सकते, वे डरेंगे तो पता नहीं कोई हम पर केस हो जाएगा, इसको हम क्यों मारे। वास्तव में कोई जाकर पुलिस से कहे हमको मारिए दो चार फेंक और हमको जेल भुगतान, तो वे डर जाएंगे पता नहीं कोई सीआईटी है क्या। और यदि हम नहीं चाहेंगे जेल जाना और हम पर मुकदमा है और मजिस्ट्रेट का आदेश हो चुका है तो जेल से बहुत दूर रहेंगे, वहां से विकृति होती है और वहां से पकड़ कर लाएंगे, दूर से खोज करते लाएंगे है ना। जो भी हमें सुख दुख मिल रहा है, पुत्र मिल रहा है, पत्नी मिल रही है या विद्या धन सुंदर शरीर या जो भी, वो हमारे पूर्व कर्मों का हिसाब है। तो सत्गुण में कर्म करते हैं तो कुशल सुख मिलता है और तमोगुण में कर्म करते हैं तो दुख मिलता है। और समवहार इसमें श्लोक आया, सम अवहार जो मिश्र कर्म करते हैं, रजोगुण तमोगुण और सत्गुण सब मिले रहते हैं, जो मिश्र कर्म करते हैं तब मिश्र तब सुख दुख दोनों मिलता है। तो इस तरह से है इन कर्मों के द्वारा हमें देह मिलता है, देह से कर्म करते हैं और कर्म से फिर देह मिलता है, तो देह से फिर कर्म करते हैं तो फिर देह मिलता है, देह से कर्म, कर्म से देह, और फिर देह के कर्म कर्म से देह चक्र चल जाए। तो कभी देहावली, इसमें देह अवली, देहा नाम अवली, 84 लाख जोनियों में विविध देह है और विविध देह मिलते रहते, तो स्वदेह निष्पादित कर्मानुभव, अपने देह से जो हम कर्म निष्पादित किए हैं, संपादित किए हैं, उसका अनुभव हमें करना होता है, भोगना पड़ता है। इस समय जो हम पा रहे हैं वो हम पूर्व देह में करके पा रहे हैं, और इस समय जो कर रहे हैं वो अगले देह में मिलेगा, देह से किया हुआ कर्म देह में मिलेगा। ये देह तो चल जाएगा, खत्म हो जाएगा, तो दूसरा देह मिलेगा, और इस देह से किया हुआ कर्म हमें दूसरे देह में भोगना पड़ेगा, भोगना पड़ता है। तो भगवान की माया से जीव की देह में अहम बुद्धि होती है, और प्रकृति के गुणों से चालित करते हैं, कर्म करता है, कर्म करके फिर दूसरा देह मिलता है, और उस देह में सुख दुख आदि भोगता है। मिश्र कर्म का अर्थ है प्रमाद, आलस, फिर सवेरे टहलना, कुछ दान भी करना थोड़ा, ये सब दान देना सत्वगुण कर्म है, या वेद पढ़ना, सवेरे टहलना। तो समुद्र के तट पर हम लोग जाते हैं तो सवेरे सत्वगुणी लोग आते हैं समुद्र तट पर, और 8-9 बजे रजोगुणी आते होंगे, 4-5 बजे तमोगुणी सब भर जाते हैं, ऐसा देखा जाता है। तो सवेरे सत्वगुण रहता है, जो भी आता है उसमें से अधिकांश लोग कुछ ईश्वर का स्मरण करते हुए आते हैं, निद्रा आलस नहीं रहता है, टहलते हैं, लेकिन कुछ ही समय के बाद से जब ही घर आए, ऑफिस में गए तो रजोगुण, रात्रि में तमोगुण, निद्रा आलस, ये विविध कर्म हो ही रहे हैं, और इन कर्मों के द्वारा संपादित देह मिलता है, और उन विविध देहों से कर्मानुभव होता है। जैसे कर्मानुभव शब्द दिया है, कर्मणाम अनुभव, कर्मों का अनुभव मतलब फल भोगना पड़ेगा सबको। इस समय जो तुच्छ सुख के लिए प्रयास कर रहे हैं, पाप करते हैं, तो इसका फल दूसरे शरीर से भोगना पड़ेगा, कर्मानुभव होगा। और क्या कर्मानुभव होगा? बिजोग संजोग आदि, जिसमें कर्मों का अनुभव होगा वियोग और संयोग से, जिसका हम चाहते हैं संग उसका संग नहीं मिलेगा, जिन वस्तुओं को हम चाहते हैं वस्तुएं मिलेंगी नहीं, उसको वियोग कहते हैं, और जिसको नहीं चाहते हैं वही हमारे साथ रहेगा, ये वही वस्तु हमको दी जाएगी भोगने के, इसको संयोग, यही है दुख ना। जिसका हम संग नहीं चाहते हैं, जो बात नहीं चाहते हैं, वस्तु नहीं चाहते हैं, वही सब हमारे सामने रख दिए। कोई नहीं चाहता है बूढ़ा होना, कोई नहीं चाहता है मरना, रोगी होना, लेकिन रोग का संजोग हो जाता है और स्वास्थ्य का विजोग हो जाता है। चाहते हैं हम स्वस्थ रहें, सुखी रहें, लेकिन मिलता नहीं। और कभी कभी तो सबसे बड़ा दुख खास करके किसी व्यक्ति के कारण होता है, जिसका संग मनुष्य चाहता है उससे भेंट ही नहीं होती, केवल फोन पर संतोष करना पड़ता है। जिसका संग चाहता है उसका संग नहीं हो पाता है, जिसके संग रहना नहीं चाहता है उसी के साथ रोज रहना पड़ता है। कभी कभी ऐसा भी होता है, साथ में रह रहे हैं और सालों भर से उस आदमी से कोई बोला चाली नहीं, कुछ नहीं, ऐसा रहता है। सभी तो प्रेमी नहीं है, और जिसका साथ चाहता है उसका संग होता नहीं, यह एक बहुत बड़ा दुख है। संजोग विजोग आदि, ये आदि है, संजोग विजोग आदि, हम जो चाहते हैं नहीं मिलता है, और जो नहीं चाहते हैं वो हमारे पास पड़ा है, इसको यही आदि है। इस प्रकार से विभिन्न दुख और सुख हम भोगते हैं। अनादि संसार अनुभव से द्वार भूते न सदिंद्रिय वर्गे, अनादि संसार का अनुभव का, संसार के अनुभव का, जन्म मरण दुख प्यास आदि का जो अनुभव है कौन करते हैं, किसके द्वारा जीव करता है? षडिंद्रिय वर्गेण द्वार भूते, यही माध्यम है इंद्रियां जिनके द्वारा हम संसार का अनुभव करते हैं। आंख से देखते हैं, रूपादि कान से शब्द आदि सुनते हैं, त्वक से स्पर्श करते हैं, घ्राण से गंध लेते हैं और जीवा से टेस्ट लेते हैं। ये अनादि काल से संसार का अनुभव करते आए हैं, नया अनुभव नहीं कुछ हो रहा है। सियार के शरीर में जो अनुभव किए वही हम लोग इस शरीर में कर रहे हैं। वो भी कुछ देख रहा है, वो भी कुछ खा रहा है, छू रहा है कि नहीं? सियार के शरीर में हम जो कर रहे हैं वही हम राष्ट्रपति शरीर में भी करते हैं, कोई अंतर नहीं। लेकिन प्रत्येक समय जीव को लगता है कि बस यही चांस है संसार अनुभव का, कर लो संसार का अनुभव, बाद में ऐसा शरीर मिलेगा कि नहीं मिलेगा। ऐसा शरीर सब समय मिलेगा और संसार का अनुभव करते ही हमारे ऐसा शब्द दिया जा रहा है, संसारानुभवस्य द्वार भूतेन षडिन्द्रिय वर्गेण। ये छह इंद्रियों का जो संघार है यही संसारानुभव का साधन है। मन से संसार का चिंतन करते हैं और अन्य पांच इंद्रियों से तो प्रकट ही दर्शन स्पर्श आदि करते हैं। संसार अनुभव से अनादिकाल संसार का अनुभव करते, कभी कृष्णानुभव करते सब ठीक रहा था। ठीक संसारानुभव के विपरीत है ब्रह्मानुभव, ब्रह्मानुभूति। ब्रह्म मतलब भगवान श्री कृष्ण, उनके नाम रूप लीला आदि की अनुभूति जीव को होनी चाहिए। यह श्रीमद भागवत सप्ताह संसारानुभव को तोड़कर कृष्णानुभव देने के लिए है और इन्हीं इंद्रियों से कृष्ण का अनुभव करेंगे, आंख से इनको देखेंगे और कान से सुनेंगे, जीवा से प्रसाद खाएंगे, नासिका से उनके चरणों पर चढ़ाई गई तुलसी या पुष्प की गंध लेंगे। ये है कृष्णानुभव, ये संसारानुभव नहीं है, ये संसारानुभव नहीं है, यह है ब्रह्मानुभव, ब्रह्मानुभूति। मंगला आरती में खड़ा होकर के कुछ ब्रह्मानुभूति करनी चाहिए और निद्रा में जो लोग रहते हैं मायानुभूति करते हैं, माया की अनुभूति करते हैं। वो अनुभूति कभी शेष होगी नहीं, कुत्ता भी बनेंगे तो कई घंटा सोए रहेंगे, बहुत ज्यादा अनुभव ले रहे हैं, कुत्ता भी बनकर अनुभव लेते हैं। और भी कई तरह के अनुभव है, खाने पीने स्त्री संग आदि के, ये सब अनुभव हर एक जोनियों में मनुष्य जीवन इसका अनुभव करने के लिए नहीं, कोई नया नहीं। अब अनुभव करना है शरीर से भगवत रस का, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम। भाव का अर्थ होता है जन्म, किसी वस्तु का पैदा होना, और अनुभव का अर्थ होता है जो बाद में सुख दुख आदि हम प्राप्त करते हैं, इसको अनुभव करते हैं। जन्म के बाद जो हमारे साथ लग जाता है, जोड़ दिया जाता है, इसको अनुभव करते हैं, अनुभव करते हैं सुख का दुख का, ठंडा गर्मी मान अपमान। जीव काम से अनुभव करता है कि उसको गाली दे रहा है कि क्या कर रहा है ना, काम से अनुभव करता है। कभी कभी तो बिना समझे अनुभव करने लगता है। मैं हॉस्टल में एक बार रसोई घर के पास खड़ा था, मैं इसको कह चुका हूं, तो एक विदेशी वहां पर भोजन बना रहा था और दो गुजराती कपल, दो स्त्री और पति और पत्नी, और वही भोजन बना रहे थे भगवान के लिए, तो तीनों बना रहे थे। तो ये आपस में दोनों गुजराती में बात कर रहे थे, गुजराती में बात कर रहे थे, स्वाभाविक भाषा है अपनी, तो आनंद से भगवान के विषय में बात कर रहे थे और मैं वहीं खड़ा था, हमसे भी बात करने लगे गुजराती में, कहा था कि आप लोग गुजराती में बात करते। तो उनके सामने वो क्या कहता है, महाराज इनको आप मना कीजिए, हमेशा गुजराती में बोलते रहते, इनको कहिए इंग्लिश बोलने के लिए। मैं कहा क्यों, इनकी भाषा है, आपस में बात कर रहे थे। कहता है पता नहीं हमको गाली देते हैं कि क्या है। बिना शब्द कहीं अनुभव करने लगे गाली दे रहा है कि क्या दे रहा है, समझ में नहीं आ रहा है तो गाली दे रहा है। कभी कभी बिना मतलब के आदमी मान लेता है कि हमारा अपमान हो रहा है। अपमान क्या होगा? तो जब मैं स्थान 1976 में रह रहा था वृंदावन में, शुरू में उस समय प्रभुपाद जी क्लास देते थे शाम को, तो हमारे गांव से हमारे बाद पहला व्यक्ति आया था स्थान में रहने के लिए, एक लड़का, तो हमारी उम्र का, तो नया नया भक्त था, तो उसको टेम्पल कमांडर लगा दिया साफ करने में। उस समय सफाई सबसे बड़ा काम रहता था भक्तों का, बाथरूम साफ करना और सब करना। तो खा करके आराम कर रहा था, तब तक भक्त कहा कि चलो चलो क्लीनिंग करना है। हमारे साथ जो आया था वो अखड़ आदमी था, देहात का, वो नहीं जा रहा था, उठा नहीं, उठा नहीं, तो टेम्पल कमांडर उसका बांह पकड़ दिया, बांह झटक दिया, तो उसका कान पकड़ लिया। जो कान पकड़ लिया तब तक तो वो उठा करके उस विदेशी टेम्पो कमांडर को पटका था सोने, और हम लोग वही गेस्ट हाउस में थे, उस समय बिल्कुल नहीं बना था, गेस्ट हाउस में थे, फंदी आवाज सुने, धड़ाम से आवाज हुई। वो पहुंचा और उसके बाद वो रोता हुआ टेम्पो कमांडर हमारे पास आया कि राधा गोविंद तुम्हारा आदमी हमको मार दिया, ये किया वो किया वो किया। मैं तो पड़ा फिर भी पड़ा, मैं गया डांटने लगा, कैसा क्यों किए। तो वो झूठ बोल रहा था लड़का, वो कहा कि हमको गाली दे रहा था और एक अक्षर इंग्लिश नहीं जानता था, तो भोजपुरी बोलने वाला, हिंदी बोलने वाला, एक अक्षर भी अंग्रेजी नहीं जानता। तो मैं भोजपुरी में पूछने लगा उससे कि कैसे समझे गाली दे रहा है, अंग्रेजी जानते हो? वो कहता है अंग्रेजी नहीं जानता हूं तो क्या मैं गाली भी नहीं समझता हूं? आप हमको सिखा रहे हैं? मैं अंग्रेजी समझ ही नहीं रहा तो गाली दे रहा, क्या कर रही, कैसे समझा? ये भाषा का भी प्रॉब्लम, बहुत प्रॉब्लम है वास्तव में। इस तरह से मिथ्या मान रहा था एक गाड़ी के रहा, तो हमसे एक आंख में लगा कहने की, नहीं मारा तो गाड़ी के रहा था, बुद्धुत बुद्धुत बोल रहा था तो गाड़ी के रहा था, गाड़ी करके रहा था तो मान लिए गाड़ी के रहा। इस तरह से हम जो हैं कान से बहुत ज्यादा अनुभव फालतू कर रहे हैं, और जिस शरीर में जाएंगे वहां इंद्रियां मिले, और इंद्रियों से तीन वही रस गंध काम को पत्ते रखते, यही इंद्रियां जो है वो द्वार भूत है, यही द्वार है संसार अनुभव का, इसलिए पहला करके काम करना चाहिए तो द्वार बंद कर दो, द्वार बंद संसार, लेकिन इन द्वार को टिकट और बंद करते तो जी नहीं सकते, तो यहां तो बंद कर दें और महात्मा गांधी के बांधवों की तरह कान बंद करें, आंख बंद कर पूर्व, वो तो ठीक है, तो बुरा नहीं बोले, बुरा नहीं देखना, बुरा नहीं सुन, लेकिन अच्छा भी तो नहीं बोल पाएंगे, सवाल ये है। और ये अच्छा बोलने के लिए भगवान मुख बनाए हैं, अच्छा सुनने के लिए कान बनाए हैं, अच्छा देखने के, तो यह इंद्रियों को बंद करने का मतलब है भगवान को देखने, उनके बारे में सुन, जब वो भरे रहेंगे तो संसार का अनुभव नहीं होगा, संसार में हम रहेंगे लेकिन अनुभव नहीं होगा। तो अनादि काल से अजीव संसार का अनुभव कर रहा है, और वो अनुभव क्या है? बिंदु संजोगा दुख, सुख दुख, कभी हर्षित होता है, कभी विषाद में पड़ जाता है अनुभव। यदि घूम रहा अकस्मात कोई फिस्ट मिल गया, हर्षित, और कहीं कोई अपमान कर दिया, बस विषाद, ऐसा होता है, अनुभव हो रहा है। दुर्गा भगत इन इंद्रियों से संसार का अनुभव करता हुआ, जैसे कोई व्यक्ति जंगल में हो और उसे बहुत कष्ट हो, इस तरह से इस संसार में घूम रहा है। दुर्ग अद्भवत
दुर्ग मतलब दुर्गम अंधकार है पथ, दुर्गम पथ की तरह असुगम पथ में संसार मार्ग में यह भटक गया है जन्म मरण। यदि संसार में बहुत कष्ट है जीने में, लेकिन फिर भी इसी में वो रहता है और आपत्ति तो भगवान की माया द्वारा इसमें वो अभिनिविष्ट कराया गया है। जब था जैसे अर्थ बड़ा बड़ी शब्द, जैसे धन कमाने के लोभ से कुछ बनियों का समुदाय यदि वन में जाए उसे बहुत कष्ट होता है, उस तरह से अजीब संसार
निकला
हम लोग देखे हैं। वन में कुछ ऐसे व्यापारी वर्ग होते हैं जो वन में जाते गांव से शहर से कुछ सामान लेकर वन में जाते हैं, वन में बेचते वनवासियों और वहां से कुछ सामान लाते हैं वन में जंगल में मिलने वाले तो शहरों में बेचते हैं। इस तरह हम तो दोनों ओर से आए चाहते फायदा चाहते, लेकिन कभी कभी जंगल में उन्हें भारी संकट में पड़ना पड़ता है। कभी डाकू लूट लेते हैं, कभी नदी पार करना पड़ता है, कभी कभी तो ऐसी भी घटना हुई कि एक तो व्यापारी बह गए नदी धन कमाने के लिए बरसात के दिन, या और जो संकट का वर्णन आएगा उस तरह के अनेक संकट होते रहते हैं इस जंगल में। तो जैसे अर्थ पड़ा पैसा कमाने के खेत में पड़ा हुआ वणिक समुदाय जंगल में प्रवेश करे, इस तरह से जीव संकट